कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 10वीं पुस्तक दूसरा शमूएल का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सभी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बाइबल की पुस्तक दूसरा शमूएल की पुस्तक उसके 15 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पूर्व की बातों को हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। दाऊद की गशूरी पत्नी से उसे एक पुत्र अबशलोम और एक पुत्री तामार उत्पन्न हुए और दोनों ही अत्यधिक सुंदर थे। दाऊद का एक अन्य पुत्र जो अन्य स्त्री से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम अमनोन था, अपनी सौतेली बहन तामार की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था और उसने बहाना बनाकर उसे बुलवाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दाऊद इसके विषय में कुछ भी न कह पाया क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, वह स्वयं भी ऐसा ही कर चुका था। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि अबशलोम जो तामार का भाई था बदले की आग में जल रहा था। अतः 2 वर्ष प्रतीक्षा करने के बाद उसने अपने भेड़ों का ऊन कतरने के उत्सव पर सब राजकुमारों को भोज पर आमंत्रित किया, जिनमें अमनोन भी था, और उसे बहुत मदिरा अर्थात शराब पिलाकर मरवा डाला। यह समाचार सुनकर दाऊद बहुत दुखी हुआ। तब हम देखते हैं कि अबशलोम तो भागकर अपने ननिहाल अर्थात नानी के घर गशूर के राजा की शरण में चला गया, परंतु इधर दाऊद उसके विरह में, उसके तकलीफ में अत्यधिक दुखित रहा। युवाब यह देखकर एक चाल चलता है कि अबशलोम को दाऊद से मिलाया जाए और वह सफल भी हुआ। वह दाऊद की अनुमति से जाकर अबशलोम को ले आया और यद्यपि दाऊद ने उसे चूमा, परंतु संपूर्ण मन से उसे क्षमा नहीं किया। इस कारण अबशलोम के मन में विद्रोह का बीज अंकुरित हुआ। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अध्याय 15 और 16। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि पाप करने के बाद दाऊद ने पाया कि क्लेश अति शीघ्र उसके परिवार पर आ पड़ा। जैसा पाप दाऊद ने किया था, वैसा ही पाप उसके परिवार के सदस्यों ने किया और दाऊद उसके प्रभाव से उभर नहीं पाया। परमेश्वर ने वास्तव में दाऊद की ताड़ना की। मेरे मित्रों, इस अध्याय में अबशलोम दाऊद से विद्रोह करता है और अबशलोम बड़ी चतुराई से जनता का मन जीत लेता है। वह तो जनता का प्रिय था ही, वह एक आकर्षक व्यक्तित्व का मनुष्य था और संभवतः अधिकांश गुणों से अर्थात गुणों में दाऊद के स्वरूप था। वह राजगद्दी का उत्तराधिकारी भी था और दाऊद भी तो यही चाहता था। अब हम देखेंगे कि अबशलोम यरूशलेम नगर में है और भीतर ही भीतर दाऊद का तख्ता पलटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह कायरता का काम है, परंतु मुर्गियां सोने के लिए घर में ही आ जाती है। मेरे मित्र, अब तक अदम्य विद्रोह उठेगा और दाऊद को यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद लिखा है। इसके बाद अबशलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए और अबशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशलोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? मित्रों, ध्यान दीजिए, अबशलोम नगर के द्वार पर बैठने लगा। वह एक व्यस्त आवागमन का स्थान है। जब नागरिक वहां न्याय खोजने के लिए आते थे, तब वह उनसे हार्दिक सहानुभूति को दर्शाता था और उनसे बातचीत किया करता था। हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में। और वह कहता था कि तेरा दास इसराइल के फुलाने गोत्र का है। तब अबशलोम उससे कहता था कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशलोम यह भी कहा करता था कि भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, कि जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। मेरे मित्रों, अबशलोम बिगड़ी संतान तो था ही, साथ में चतुर राजनीतिज्ञ भी था। वह चतुर और दुष्ट था और ढोंगी भी था। आइए हम आगे पढ़ें। दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा हुआ है, फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था, और जितने इसराइली राजा के पास अपना मुकदमा तय करने के लिए आते उन सबों से यह अबशलोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशलोम ने इसराइली मनुष्यों के मन को जीत लिया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अबशलोम एक चतुर राजनीतिज्ञ था, जैसे आज के नेता होते हैं कि चुनाव जीते हैं। उनमें हाथ मिलाने और पीठ थपथपाने से अधिक और कोई योग्यता नहीं होती है। अधिकांश प्रचारक भी यही नीति अपनाते हैं। वे न तो शिक्षा दे पाते हैं और न ही प्रचार कर पाते हैं, परंतु निश्चय पीठ थपथपाने में कुशल हैं। और सच तो यह है कि हमें यही मन भावन लगता है। जहां तक मैं परमेश्वर के वचन से कह सकता हूँ कि ख्रिस्त विरोधी भी ऐसे ही उठेगा, वह संसार का सबसे महान पीठ थपथपाने वाला होगा। अबशलोम पीठ थपथपाने में अति कुशल था। वह नगर द्वार पर खड़ा होकर कहता था, भला होता कि मैं इस देश में न्याय ठहराया जाता और मैं न्याय चुकाता। आप ऐसे प्रचार का अर्थ समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में वह कह रहा था कि यदि तुम मुझे चुन लोगे तो मैं तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान कर दूंगा। मैं सब विदेशी और आंतरिक समस्याओं का समाधान निकाल लूंगा। राजनेता भी यही कहते हैं। दुर्भाग्यवश हम उनकी बात सुनते और मानते हैं तथा उन्हें वोट भी देते हैं। चुनाव जीत लेने के बाद वे कुछ भी नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, अबशलोम तो वास्तव में दाऊद से विद्रोह करने की योजना तैयार कर रहा था, और दाऊद के परिवार में यह विद्रोह का एक भयानक बात थी। दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, 4 वर्ष बीतने के बाद अबशलोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास तो जब आराम के गशूर में रहता था तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। मेरे मित्रों, उसका यह निवेदन कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है। वह निर्वासन में मानी गई मन्नत पूरी करने हेब्रोन जाना चाहता था, जबकि वह निर्वासन के समय सीरिया उत्तरी क्षेत्र में था जब उसने मन्नत मानी थी, तथापि दाऊद ने प्रश्न नहीं किया। हम दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह चलकर हेब्रोन को गया। तब अबशलोम ने इसराइल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे कि जब नरसंगी का शब्द तुमको सुन पड़े तब कहना कि अबशलोम हेब्रोन में राजा हुआ। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि दाऊद ने अपना राज हेब्रोन में से ही आरंभ किया था। वह यहूदा का राजा बनकर वहां 7 वर्ष तक रहा, और अबशलोम वास्तव में मन्नत पूरी करने वहां नहीं गया था, वह तो विद्रोह का प्रवर्तन करने गया था। दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, और अबशलोम के संग 200 नेवताहारी यरूशलेम से गए, वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में ये पुरुष अबशलोम के साथ हो लिए, परंतु उन्हें पता नहीं था कि वे राजद्रोही हैं। तब हम आगे देखते हैं दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, फिर जब अबशलोम का यज्ञ हुआ तब उसने गोलीवासी अहितोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीलो से आए, और राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा क्योंकि अबशलोम के पक्ष में लोग बराबर बढ़ते गए। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्रोह बल पकड़ रहा था और धीरे धीरे अबशलोम का दल भी बहुत बड़ा हो गया। यहाँ तक कि अहितोपेल, जो दाऊद का परामर्शदाता या सलाहकार था, उसके साथ हो गया। इससे पूर्व कि दाऊद कुछ समझ पाता, विद्रोह का आरंभ हो गया था। आइए अब हम आगे देखते हैं दाऊद का पलायन। दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इसराइली मनुष्यों के मन अबशलोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशलोम से बच ना पाएगा। इसलिए फुर्ती करते हुए चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद यरूशलेम से भागा, परंतु क्यों? वह तो यरूशलेम से घनिष्ठ लगाव रखता था, उसने यरूशलेम में ही रहकर सामना क्यों नहीं किया? मुझे पूरा विश्वास है कि दाऊद समझ गया था कि यह उसके लिए परमेश्वर का दंड था। मैं दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 25 और 26 पद के आधार पर यह कह सकता हूं, जैसे कि वहां पर लिखा है, तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा, यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटा कर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा, परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे मैं तुझसे प्रसन्न नहीं तो भी मैं हाजिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वह वर्ताव मेरे साथ करे। दाऊद समझ गया था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा था, वह जानता था कि यह परमेश्वर का दंड है। दूसरा शमूएल 13 अध्याय में हमने देखा कि अम्नोन ने तामार के विरुद्ध पाप किया और इस भयंकर घटना से दाऊद का अपमान हुआ था। यह दुर्घटना यरूशलेम में हुई थी और आपको स्मरण होगा कि बतशेबा के साथ दाऊद के पाप का घटना स्थल भी यरूशलेम ही था, जबकि उसे तो उस समय युद्ध क्षेत्र में होना चाहिए था, परंतु वह राजमहल में था। दाऊद ने यरूशलेम छोड़ दिया क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है और वह नहीं चाहता था कि जिस नगर का निर्माण उसने किया और जिस नगर से वह अत्यधिक लगाव रखता था वह युद्ध क्षेत्र बन जाए। दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके साथ थे वे भी सिर ढांके रोते हुए चढ़ गए। दाऊद यरूशलेम से लगाव रखता था और नहीं चाहता था कि वह नगर युद्ध क्षेत्र बन जाए, तथापि यह नगर अन्य सब नगरों की तुलना में सबसे अधिक ध्वंस किया गया क्योंकि उसमें विद्रोह था। मेरे मित्रों, यरूशलेम से पलायन में दाऊद का एक और कारण यह भी था कि वह अबशलोम की घात नहीं कर सकता था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि वह अबशलोम मन से तो अबशलोम को जीवित भी देखना चाहता, वह उसकी हानि देखना नहीं चाहता था। मेरे विचार में दाऊद अबशलोम को मनुष्यों में सबसे अधिक प्रेम करता था। यरूशलेम त्याग से दाऊद का जीवन घोर संकट में था, परंतु दाऊद के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, वह तो अनेक बार घोर संकट में से निकल चुका था। वह अपने जीवन से अधिक परमेश्वर की संगति तथा अपने पुत्र का साथ चाहता था। मित्रों, इस पृष्ठभूमि के साथ हम उठते हुए विद्रोह को देखेंगे। आइए हम आगे बढ़ें। दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, तब राजा ने गत्ती इत्ते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा, तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि इत्ते गत का निवासी था। गत पलिस्तियों का एक नगर था और वह शायद अपने देश का सेनापति था, क्योंकि आगे चलकर दाऊद ने उसे युआब और अबीश के साथ अपना सेनापति बना लिया था। उसने दाऊद से ऐसी निष्ठा निभाई कि अपने परिवार के साथ निर्वासन में दाऊद के साथ जाने की जिद करने लगा। हम दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 21 से 23 पद में पढ़ते हैं, इत्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा होगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इत्ते से कहा, पार चल। सो गत्ती इत्ते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए और राजा भी किद्रोन नाम नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद के अनेक निष्ठावान अनुयायी थे, उसके लिए प्राण निछावर करने के लिए भी वे तैयार थे। हम आगे देखते हैं कि वाचा का संदूक यरूशलेम को लौटा। दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, तब क्या देखने में आया कि सदोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा, यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वास स्थान को भी दिखाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर की वाचा के संदूक का उसके यथास्थान यरूशलेम को भेज दिया। उसे इस तथ्य की अनुमति थी कि उसके क्लेश परमेश्वर का दंड थे। यरूशलेम से प्रस्थान करते समय वह जैतून के पर्वत पर से रोता हुआ जा रहा था। हम दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 31 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहितोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहितोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। ध्यान दीजिए, अहितोपेल दाऊद का अति सम्मानित परामर्शदाता या सलाहकार था। जब वह दल बदल कर यह अबशलोम के साथ हो गया, तब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि अबशलोम को दिए गए उसके परामर्श मूर्खता में बदल जाएं। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। यहां पर ध्यान दीजिए कि दाऊद ने अबशलोम की हानि की प्रार्थना नहीं की। अब आगे देखते हैं कि हुशै को पुनः नगर भेजना। हम दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 32 और 33 पद में पढ़ते हैं, जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर को दंडवत किया करते थे, तब एरेकी हुशै अंगरखा फाड़े हुए सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा। यहां पर ध्यान दें कि संभवतः वह आयु में अधिक था और उसे अधिक देखरेख की आवश्यकता थी, अर्थात उसको अधिक संभालने की जरूरत पड़ती। दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 34 से 37 पद में लिखा है, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशलोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूंगा, जैसे मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसा ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहितोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा, और क्या वहां तेरे संग सादोक और एब्यातर याजक न रहेंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एब्यातर याजकों को बताया करना। उनके साथ तो उनके दो पुत्र अर्थात सादोक का पुत्र अहिमास और एब्यातर का पुत्र योनातान वहां रहेंगे, तो जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। और दाऊद का मित्र हुशै नगर को गया और अबशलोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। ध्यान दीजिए कि अहितोपेल के पक्ष त्याग को जानकर दाऊद ने हुशै को अबशलोम के पास भेजा कि अहितोपेल के परामर्श को अस्वीकार्य बनाए, क्योंकि वह अब एक खतरनाक बैरी था। हुशै दाऊद का मित्र था और दाऊद के लिए जान खतरे में डाल सकता था। मपीबोशेत के सेवक सीबार का दाऊद से विश्वासघात को हम आगे देखते हैं। आइए हम देखें दूसरा शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा हुआ है, दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मपीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी किशमिश की 100 टिकिया, धूप काल के फल की 100 टिकिया और कुपी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने सीबी से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबी ने कहा, गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए है और रोटी और धूप काल के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और दाख मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि मपीबोशेत योनातान का लंगड़ा पुत्र था। क्योंकि दाऊद योनातान से बहुत अधिक प्रीति रखता था, इसलिए उसने मपीबोशेत की देखरेख का उत्तरदायित्व उठाया था। मपीबोशेत के सेवक सीबा ने सोचा कि दाऊद के परिवार की आंतरिक समस्याओं के कारण शाऊल के परिवार को सिंहासन पाने का अच्छा अवसर मिलेगा। मपीबोशेत शाऊल का एकमात्र उत्तराधिकारी था। अपनी झूठी कहानी सुनाकर सीबा मपीबोशेत की संपत्ता से कुछ भाग प्राप्त करना चाहता था। दाऊद के पास तथ्यों की जांच का समय नहीं था, अतः उसने उतावलेपन में सीबा को मपीबोशेत की संपदा दे दी। तब आगे क्या होता है देखें, शिमी दाऊद को कोसता है। दूसरा शाऊल की पुस्तक 16 अध्याय उसके 5 से 8 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला, वह गेरा का पुत्र शिमी नाम का था, और वह कोसता हुआ चला आया और दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे, और शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा के राज्य को तेरे पुत्र अबशलोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। मेरे मित्रों, शिमी ने दाऊद को जो कहा उसमें कुछ तो सच्चाई थी। दाऊद खूनी था, यहोवा ने उससे बदला लिया था, और इसमें भी कोई दो राय नहीं थी। हम दूसरा शामिल 16 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, तब सरुयाह के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए, मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। अभिषय दाऊद का साथी था, उस व्यक्ति की आवाज सदा के लिए बंद कर देना चाहता था। शिमी की बातों को सुनकर दाऊद की प्रतिक्रिया को देखें, दूसरा शामिल 16 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, राजा ने कहा, सरुयाह के बेटों मुझे तुमसे क्या काम, वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया। फिर दाऊद ने अभिषय और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है तो यह विन्यामिनी अब ऐसा क्यों ना करे, उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, दाऊद के कहने का अर्थ था, मैं इस बाहर वाले की बात का बुरा नहीं मानता, मैं उसे बदला लेना नहीं चाहता, मेरे साथ जो हो रहा है वह तो परमेश्वर का दंड है, परंतु दुख की बात तो यह है कि यह मेरा अपना पुत्र है अबशलोम जो मुझसे विद्रोह करता है। हमने दाऊद को यरूशलेम से निकलते देखा, अब हम फिर से यरूशलेम चलते हैं और हुशे को अबशलोम की सेवा करते हुए देखते हैं। दूसरा शाऊल 16 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा हुआ है, अबशलोम सब इसराइली लोगों समेत यरूशलेम को आया और उसके संग अहितोपेल भी आया। जब दाऊद का मित्र एरी के हुशे अबशलोम के पास पहुंचा तब हुशे ने अबशलोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशलोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है, तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया। अब ध्यान दीजिए, अबशलोम को अचंभा हुआ कि उसके पिता का यह विश्वास योग्य मित्र उसके साथ निर्वासन में नहीं गया। हम देखते हैं दूसरा शाऊल 16 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, हुशे ने अबशलोम से कहा, ऐसा नहीं जिसको यहोवा और वे लोग क्या वरन सब इसराइली लोग चाहें, उसी का मैं हूं और उसी के संग मैं रहूंगा, और फिर मैं किसकी सेवा करूं, क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा न करूं, जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। हुशे यह तो कह रहा था कि परमेश्वर और जनता का चुना हुआ पात्र का ही मैं सेवक रहूंगा, जबकि गुप्त रूप से वह दाऊद के लिए जासूसी का काम कर रहा था। हम दूसरा शाऊल 16 अध्याय उसके 20 और 22 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब अबशलोम ने अहितोपेल से कहा, तुम लोग अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहितोपेल ने अबशलोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया उनके पास तू जा, और जब सब इसराइली यह सुनेंगे कि अबशलोम का पिता उससे घिन करता है तब तेरे सब संगी हिया बांधेंगे। सो उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया और अबशलोम समस्त इसराइल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए कि अहितोपेल ने अबशलोम को घृणित कार्य करने का परामर्श दिया, परंतु वह इसराइल के महान लाभ के लिए था। अबशलोम का यह काम एक अशिष्ट एवं असभ्य घोषणा थी और दाऊद के अधिकारों का अंत हुआ और उसका जो कुछ था वह अब उसके पुत्र अबशलोम का है। दूसरा शाऊल 16 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, उन दिनों जो सम्मति अहितोपेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहितोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। मेरे प्रिय मित्रों, अहितोपेल की सम्मति ऐसी मानी जाती थी जैसे परमेश्वर का वचन हो। अबशालोम के इस कार्य द्वारा परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। दूसरा सामुएल 12 अध्याय उसके 11 और 12 पद में परमेश्वर ने कहा था, सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा और वह दिन दोपहर में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिप कर किया था परंतु मैं यह काम सब इसराइलियों के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा। जी हाँ, हम दाऊद को फिर से गुफाओं में देखते हैं। अब वह क्या करेगा? इधर अबशालोम दाऊद की सेना को पराजित करने की तैयारी में है और दाऊद युद्ध का पुराना योद्धा है और वह युद्ध कला जानता है। अबशालोम अपने पिता के विरुद्ध खड़ा होकर जोखिम भरा काम कर रहा है। यहाँ त्रासदी तो यह है कि दाऊद उससे प्रेम करता है और उसकी जान बचाने का प्रयास कर रहा है। मेरे प्रियो, दाऊद के लिए यह समय बहुत कठिन था और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब दाऊद से सहानुभूति होगी। दाऊद न तो गिड़गिड़ाता है और न ही ऊंचे स्वर में रोता है। वह बस यही कहता है कि जब तक मैं देख पाऊं कि परमेश्वर के साथ सब उचित है तब तक मैं इन आने वाले कष्टों को झेलूंगा। मेरे मित्रों, दाऊद एक महान व्यक्तित्व का मनुष्य था। उसने घोर पाप किया परंतु वह एक ऐसी अद्भुत कलाकृति था जिसमें केवल एक ही दोष था। अधिकांश मसीही जन आज ऐसे ही हैं। क्या उसकी भेंट किसी ऐसे मनुष्य से हुई है जिसमें कोई दोष ना हो? क्या आपकी भेंट किसी से हुई है जिसमें कोई दोष ना हो? हम सबके जीवन में दोष है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमारे दोष के कारण हमारा त्याग नहीं करता है, हमें दंड देता है और हमें अपने निकटता में लाता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ को प्राप्त किया है। परमेश्वर चाहता है कि आप भी परमेश्वर की निकटता में आए, क्योंकि वह किसी भी पापी को निर्दोष नहीं छोड़ता। वह चाहता है कि आप प्रभु को ग्रहण करें, उसे अपने जीवन में आने दें। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, हो गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हम...